टॉपिक हमने लिया है बी हैप्पी, वो तो हर कोई चाहता है खुश रहना। हिंदू दर्शन शास्त्र में एक मीमांसा दर्शन है, तो वो कहते हैं स्वर्ग क्या है, कहते सुख या खुशी ही स्वर्ग है। सर्वो ही पुरुषः सुखम कामयते तस्मात् सुखम वही स्वर्गः। हर वो प्राणी, हर वो इंसान खुशी चाहता है, सुख चाहता है। हम कुछ भी करते हैं लाइफ में इसीलिए करते हैं कि खुश रहें, सुखी रहें। इसीलिए स्वर्ग और कुछ नहीं, सुख का नाम है। इस जीवन में भी खुश रहें, मरने के बाद भी कोई स्वर्ग नहीं। जो भी जन्म मिले, जो भी भोग मिले, वो खुशी देने वाला हो। तो हम सब कोशिश करते हैं खुशी पाने के लिए। उस कोशिश के बीच में कहीं कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जिसको हम खुशी का इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, वो पता चलता वो है नहीं। फिर हम ट्राई करते रहते हैं, और जो लोग समझदार हैं वो बड़े जल्दी समझ जाते हैं कहां कहां हमें एडजस्ट करना है लाइफ में, जिससे कि हमें खुशी मिल सके। खुशी समझना है तो उसके अपोजिट दुख भी समझें। सांख्य दर्शन कहता है कि तीन तरह के दुख जीवन में है, तीन तरह से, मतलब जितने भी दुख हैं उनके बैकग्राउंड में तीन तरह के कॉजेस होते हैं। एक तो आधिदैविक, ऐसा दुख जो कॉज्ड बाय नेचर है, जो हमारे हाथ में नहीं है। फ्लड आता है, सुनामी आती है, भूकंप आता है, ऐसी कोई चीजें जो नेचर में खलबली मचती है और जिसका शिकार हम हो जाते हैं, वो हम कुछ नहीं कर सकते। पर ये बहुत कम लोगों के जीवन में आता है और कभी कभार आता है। दूसरे कैटेगरी में आता है आधी भौतिक, सो दोज प्रॉब्लम्स आर पेन्स कॉज्ड बाय सराउंडिंग, जो हमारे आसपास के चीजों में कारण जो हमें दुख होता है। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमें कुछ बुरा कहता है, बुरा व्यवहार करता है, हम गिर जाते हैं, चोट लगता है, एक्सेट्रा। ये काफी बड़ा रोल इसका रहता है लाइफ में दुख का भोगने का। एक तीसरा जो सबसे ज्यादा हमारे लाइफ में खुश ना होने का जो सबसे बड़ा कॉज होता है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सेल्फ, खुद के द्वारा। खुद के द्वारा क्या, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो बेसिकली हमारा अपना क्रिएशन है। लालच है, ईर्ष्या है, एनवी है, ग्रीड है, जेलेसी है। मोस्ट ऑफ टाइम हम इतने ज्यादा सेल्फ कंसिप्ट होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। अगर कोई हमें बताए भी कि नहीं ये आपकी ये प्रॉब्लम है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मैं इसीलिए दुखी हूं। मोस्ट ऑफ हमारे लाइफ में अगर दिन अच्छा नहीं बीतता, रात को नींद नहीं आती, दुख है, स्ट्रेस है, वो इसीलिए नहीं कि नेचर में कोई कैलामिटीज आई है, इसलिए नहीं कि लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया है, वो इसलिए कि माइंड में कुछ हुआ है। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम यही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोनों कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास है, जिसको थोड़ा ठीक करें, जिसको छोड़ दें तो खुशी ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज्यादा होंगे। और ऐसी क्या चीज है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छी चीजें जो खुशी को बढ़ाए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको छोड़ने की जरूरत है। तो सबसे पहला चीज है हमारे सुख के बीच का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बीच में है वो हमारा ईगो है। अगर हम सुबह से शाम तक नोट करेंगे माइंड क्यों खराब है, अपसेट है, दुखी है, परेशान है, एक मिनट के लिए है या 24 घंटे के लिए कि लंबा समय के लिए, मोस्ट ऑफ टाइम हम देखेंगे उसकी बैकग्राउंड में ईगो काम करता है। फैमिली में झगड़ा हो, ऑफिस में गड़बड़ी हो, या कहीं कुछ भी नहीं हुआ हो, बस वैसे ही मूड अप है, उस बैकग्राउंड में आप ढूंढेंगे हमारा ईगो ज्यादा काम करता है। और ईगो किस किस रूप में इफेक्ट करता है, हमारे खुशी को खराब करता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। तो जितना व्यक्ति ईगो पर कंट्रोल करे, कंट्रोल करना तो आसान नहीं, रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है कि जब भी लाइफ में कुछ डाउन्स लगे तो हमें उसको एनालाइज करना पड़ता है, तो अगर थोड़े स्मार्टनेस रखें कि इसका असली रीजन क्या है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता है, किसी को ब्लेम और क्लेम करने के लिए ढूंढ देता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने लिए ऑनेस्ट हो जाएं, एनालाइज करें, तो डीप सेंटर में पता चलेगा हमारा ईगो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरे दुख का कारण है। तो अगर कोई सबसे पहली चीज हमें छोड़ने की, काम करने की जरूरत है, कि हम अपने ईगो पर का छोड़ सकते हैं। दूसरी चीजें जो लाइफ में छोड़ना बहुत जरूरी है अगर आप खुश होना चाहते हैं, यू कैन नॉट बी ऑलवेज राइट, ये भी एक प्रॉब्लम है। वो फैमिली हो, घर हो, ऑफिस हो, काम का फील्ड हो, कहीं भी हो, हम रॉन्ग हो ही नहीं सकते, मतलब हम नहीं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलत कोई भी होगा वो मेरे अलावा सारी दुनिया हो सकती है। इवन मैं प्रोफेशन में भी, आप जिस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, हम जिस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, मतलब हमारी उसमें ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई समझदारी नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसमें कमेंट करेंगे और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं राइट हूं और दूसरा रंग है। देखिए बच्चे और पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स में भी यही है, मां बाप रंग होने के बावजूद सरेंडर करने को तैयार नहीं। हस्बैंड एंड वाइफ में भी वही प्रॉब्लम है, कोई तैयार नहीं कि वो रॉन्ग है। कोई तो एक रॉन्ग होगा ना, पर कौन मानता है कि अच्छा चलो मैं रॉन्ग हूं, अभी नहीं माना, दो घंटे के बाद। वो तो भले हो, कुछ लोगों का जो चाहते हैं कि लाइफ में खुशी रहे तो कोई भी रॉन्ग हो अपने तरफ से सारी बोली देते हैं, माहौल ठीक रहे। तो ये बड़ी जरूरी है हमेशा अपने आप को राइट ना समझना। तो ये जो एटीट्यूड है कि अपने आप को राइट समझना, ये बड़ी जरूरी है कि हम इसको छोड़ें। दूसरी चीज, और एक चीज होती है, गिव अप यू नीड टू कंट्रोल। मुझे दूसरों को कंट्रोल करना है क्योंकि वो गलत है, या इट्स में राइट है कि मैं उसको कंट्रोल करूं, उनको लाइन पर लाऊं, उनको सीधा करूं। ये जो भाव है ये दूसरों को तो काम ठीक करता है, आप अपने सबोर्डिनेट को कंट्रोल करके कभी नहीं फिक्स करते। हो सकता है कि आपके स्ट्रिक्टनेस से, आपकी सो कॉल्ड डोमिनेटिंग नेचर के कारण आपकी सबोर्डिनेट दब जाए, चुप हो जाए, आपके सामने कुछ ना बोले, आपकी जी हजूरी करे, पीछे जरूर 100 गालियां देता होगा जो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और कंट्रोलिंग नेचर वाला व्यक्ति सबको तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता, कोई ना कोई आवाज उठाएगा, फिर अंदर प्रॉब्लम्स होता है। ये बड़ी जरूरी है, और हम सब में कहीं ना कहीं ये नेचर होता है, किसी को किसी के ऊपर हावी हो जाना, डोमिनेट कर देना, कर जाना। अलग अलग मां बाप होने के कारण, पति पत्नी होने के कारण, फिजिकल पावर होने के कारण, मनी पावर होने के कारण, पोस्ट की पावर होने के कारण, एज में बड़ा होने के कारण, कोई ना कोई कारण को यूज करके कंट्रोल करने की जो बीमारी है, वो भी सिर्फ दूसरों में दुख नहीं पैदा करता, खुद के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। जनरली आप जो वर्क प्लेस में, जो प्रोफेशनल फील्ड में है, कोई भी सेक्टर में अगर उसके नीचे काम करने वाले लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, वहां की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप आंख मूंद के समझ सकते हैं कि उसका बॉस बेटर होगा। कोई भी कंट्रोलिंग नेचर का बॉस एवरेज काम तो निकाल सकता है, पर अच्छा काम कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब तक माहौल शांत ना हो, एक दूसरे से प्यार भरा ना हो। घर में भी जो मां या बाप बड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, पूरी हाउस होल्ड को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, फादर हो, मदर हो, किस कोई भी हो, उस फैमिली में अगर आपको शांति दिखे तो समझ लेना कि वो शांति तूफान आने से पहले की शांति है, मजबूर है, सप्रेस्ड है। इससे बेटर है कि घर में हो हल्ला मचा रहे, कम से कम हर व्यक्ति खुश होता है, और खुशी से व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है। लाओत्सु फिलोसोफर चाइना के लिखते हैं, द वर्ल्ड इज ओन बाय दोज हु लेट इट गो, बट व्हेन यू ट्राई एंड ट्राई द वर्ल्ड इज बियॉन्ड विनिंग। तलवार से आप किसी को झुका तो सकते हो, पर उससे आप काम नहीं निकलवा सकते हो, हल्की फुल्की काम निकाल सकते हो, और जब आपका काम पूरी तरह नहीं निकलता है तो आप दुखी होते हैं। तो ये एक आदत है जिसको हमें छोड़ने की जरूरत है। गिव अप कंस्टेंट नीड टू ब्लेम एंड कंप्लेन। हमारे में से भी बहुत लोग होते हैं, कोई आपको एक आधा मिल जाएंगे जो पूरी जिंदगी दुखी मिलेंगे, लटकाए हुए मुंह मिलेंगे, क्योंकि उनसे सबसे कंप्लेन है, ये सरकार खराब है, ये रोड खराब है, ये एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, खराब खराब करके दूसरे देश में भी चले गए, मतलब अमेरिका में भी आ गए, ये खराब है, ये खराब है, तो जहां अच्छा था वहां से छोड़ के क्यों आ गए, तो खराब है, सोसाइटी खराब है, नेबरहुड खराब है, लोग खराब हैं, सबसे कंप्लेन है। ऐसा सब नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, पर मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, आप उनकी शकल भी देखेंगे, अंदर तो आप झांक नहीं सकते, शकल से ही पता लग जाएगा कितने दुखी आत्मा है। मतलब कंप्लेन करना या दूसरों को ब्लेम करना और अनहैप्पी होना आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। हमें क्या सीखना है, सुखी रहना है, मिनिमम कंप्लेन करो, मिनिमम ब्लेम करो। जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना सीखूं, तब तक मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक मैं सारे प्रॉब्लम का जड़ अपने अलावा दूसरों पर छोड़ूं, मैं कभी अपने आप को ठीक कर ही नहीं सकता, तो मेरे लाइफ में प्रोग्रेस तो स्टॉप हो जाता है, फिर कहां से भला आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को ब्लेम करना, ईश्वर अगर कोई नहीं मिलता तो ईश्वर पर भी ब्लेम कर देते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कोई भी सोसाइटी या देश कंट्री भी जब ये कंप्लेनिंग मोड में रहता है, दूसरों को ब्लेम करता है, मेरे राज्य में गरीबी है क्योंकि अंग्रेज जिम्मेदार हैं, ये हो गया कि दूसरे जिम्मेदार हैं, तो भी वो दुखी रहेंगे, क्योंकि जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता हूं, मैं कोई एफर्ट डालूंगा ही नहीं कि कुछ अच्छा हो। तो कोई भी इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी हो, ये जरूरी है हमारी उसमें गलतियां हो ना हो, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम तब तक फिक्स नहीं कर सकते जब तक खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, किसी ना किसी को लेना होगा, ना आई शुड बी फर्स्ट टू टेक दैट। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दुखी होने का, टू इंप्रेस अदर्स। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी उनकी बीत गई दूसरों को खुश कराते कराते। कपड़े में इसीलिए ऐसा नहीं पहनता हूं कि मुझे अच्छा लगता है, लोग खुश हो जाएं, किसी को क्या लगेगा। मैं खाना इसीलिए ये नहीं खाता हूं कि मुझे अच्छा लगता है, लोग क्या कहेंगे। मैं घर इसीलिए नहीं बनाया ऐसा कि मुझे उसमें अच्छा लगेगा, एंजॉय करूंगा, कंफर्टेबल है, नहीं, दूसरों क्या कहेंगे। मैं इसीलिए किसी प्रोफेशन में नहीं हूं कि उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, कि वर्क सेटिस्फेक्शन होगा, या पैसा ज्यादा मिलेगा, या पावर मिलेगा, नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली को अच्छा लगता है, मेरे रिश्तेदारों को अच्छा लगेगा। जब मेरी लाइफ में कोई भी डिसीजन दूसरों के कारण लिया जाता हो, दैट इज द वर्स्ट डिसीजन एंड द रॉन्ग मोस्ट रॉन्ग डिसीजन। दूसरों के कारण मतलब मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेरे लाइफ में क्या होगा, अगर मैं ये सोच के मैं कुछ काम करता हूं या कराता हूं कि दूसरों का ओपिनियन इसमें का मैटर करता है, तो वो कभी भी हमारे लाइफ में खुशी नहीं ला सकता। आप कैसा भी कपड़े पहने, आप अगर दूसरों की ओपिनियन को ज्यादा भाव नहीं देते हो, आप किसी भी कपड़े में कहीं भी जा सकते हो, विथ फुल कॉन्फिडेंस एंजॉय करके आ सकते हो। अगर आप उस नेचर के हैं जहां दूसरों का ओपिनियन आपके लिए हर वो छोटी छोटी चीजें मैटर करता है, कितने भी बढ़िया कपड़े पहन करके पार्टी में जाओ, घर वापस आने के बाद दुखी मिलोगे, क्योंकि 10 लोगों ने अच्छा बोला, पर जो चार वो जो लेडी है ना वहां थी, उसने देखा ऐसे घूर के देखा, जली होगी, जेलेसी फील किया होगा। मैं कैसा खाता हूं, कैसे पीता हूं, क्या बोलता हूं, क्या करता हूं, अगर मेरे सबकॉन्शियस में यह बना बैठा है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो मैं अपने लाइफ में कोई भी खुश हो ही नहीं सकता। मतलब पूरा का पूरा आर्टिफिशियल लाइफ है। द मोमेंट यू स्टॉप ट्राइंग टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, आप खुशी से भर जाओगे, आप एंजॉय करोगे लाइफ को। लाइफ में खुशी जरूरी है, दूसरों का ओपिनियन सेकेंडरी होना चाहिए। हमारी ज्यादातर इवन हमारे धर्म को भी, जो हम रिलीजियस एक्टिविटीज या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करते हैं, उसमें भी ज्यादातर लोगों के लाइफ में यही घुस गया है, दूसरों को इंप्रेस करना। गॉड को, ईश्वर को इंप्रेस करना नहीं। मान लीजिए आप पति पत्नी पे आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, या मां बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, क्या आप अपने प्यार करने के लिए ये जरूरी है कि आप सोसाइटी में घर से बाहर जाकर के अपने बच्चों को हक करोगे कि बच्चे लोग क्या इंप्रेस्ड होंगे, देखो मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूं, या आप अपने स्पाउस को इसीलिए पब्लिक में जाकर हक करोगे? नहीं, आप प्यार करते हो, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के साथ हमारा संबंध भी बहुत ही प्राइवेट है। मुझे उससे प्यार है, डिवोशन है, सरेंडर करता हूं। इट शुड बी प्योर प्राइवेट मैटर। पर जब हम पब्लिक में दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं कि चार लोग देखें, तो हिपोक्रेसी बढ़ती है ना। वहां ईश्वर का मतलब है ना आपका मतलब है। अगर कोई मां बाप ऐसा करता हो अपने बच्चों के साथ कि पब्लिक को या किसी को इंप्रेस करने के लिए उनके सामने बच्चे को प्यार करता हो और प्राइवेट में ज्यादा नहीं, सोचिए वो बच्चा मां बाप के बारे में क्या सोचता होगा। ईश्वर भी हमारे बारे में यही सोचता होगा। अगर पति पत्नी के रिश्ते में पति या पत्नी अगर पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए प्यार कर दिखाते हो पर प्राइवेट में कोई प्यार ना हो, सोचिए आपकी स्पाउस आपके बारे में क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी। यही ईश्वर के बारे भी सोच रहा होगा, बड़ा प्राइवेट है। सो नेवर ट्राई टू इंप्रेस एनीवन। कुछ चीजें मजबूरी में है, अगर आप वर्क प्लेस में हैं, कोई काम करते हैं, वहां की कुछ डिमांड है, आपको 24 घंटे दान दिखाने की जरूरत है, आप सेल्समैन है, रिसेप्शन में है, पब्लिक लाइफ में है, लीडर है, पॉलिटिशियन है, दैट्स योर प्रोफेशनल ड्यूटी, यू मे डू और नॉट डू। पर अपने इंडिविजुअल लाइफ में जब तक हम नेचुरल नहीं होंगे, किसी भी काम को करते समय अगर वो अपना नेचर साथ में ना होगा तो खुशी नहीं मिलेगी। इसी से रिलेटेड है, स्टॉप एक्सपेक्टिंग देम टू लाइक यू। मुझे लोग पसंद करें, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे पास एक महिला आई, सब कुछ है उनके पास, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, जो भी आप सोच सकते हैं कोई अच्छी चीज होनी चाहिए। दुखी है, जो कारण बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो उनके फ्रेंड सर्कल है चार पांच जो भी, उनको लगता है उनमें एक दो जो है वो उसको इग्नोर करते हैं, उतना भाव नहीं देते हैं, वो बाकी फ्रेंड्स को, मतलब जो उनकी ग्रुप में बाकी फ्रेंड्स को तो ध्यान जितना इंपोर्टेंस देते हैं उसको उतना नहीं देते हैं। और उनका कहना है कि सालों से मुझे ये खलता है, बहुत स्ट्रेस में रहती हूं, स्ट्रेस में रहती है। देवियों सज्जनों, उसके पास सब कुछ है, वो खुद भी अच्छी हैं, सुंदर हैं, बच्चे अच्छे हैं, घर अच्छा है, पैसा है, नाम है, एवरीथिंग इज देयर। सिर्फ उनके कुछ दोस्त उसको लगता है कि उसको पूरा लाइक नहीं करते। दुखी है। हम भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लेकर चलते हैं। कभी ना कभी आपने कुछ किया, किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया, कुछ पब्लिक में कुछ किया, एक्सपेक्टेशन बना रहता है, कोई आकर बोले अच्छा किया, अच्छा कपड़ा पहने हो, अच्छा बोला, अच्छा गाया, अच्छा दिख रहे हो, किसी ने नहीं बोला लगा दुनिया मर गई है।
या मैं बहुत इतना छोटा हूं, इतना गलत हूं, कोई मुझे लाइक ही नहीं करता। हम अपनी खुशी को दूसरों के वहां, दूसरों के हवाले कर देते हैं, इतने डिपेंडेंट बन जाते हैं खुशी ढूंढने के लिए, मतलब दूसरों की हम कठपुतली हैं। तुम मेरी तारीफ करो मैं खुश होऊंगा, तुम मुझे ठीक से देखो तो मैं खुश होऊंगा। और होता क्या है, मैं खुश नहीं हो पाता हूं क्योंकि दूसरों ने कोई, दूसरों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ही हो कि वो आपको खुश करें। खुशी हमारी अपनी है, या तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएं तो हम अपनी मर्जी से खुश होंगे, अपनी मर्जी से दुखी होंगे, या अपने आप को दूसरों के इतने सबोर्डिनेट कर दें, अपने आप को डिपेंडेंट बना दें कि दूसरे जब चाहे ना चाहे। आज दुश्मन का मन हुआ, मतलब हो सकता है आपका फ्रेंड हो पर आपको दुखी करने का मन है, तो आपको इग्नोर कर दिया तो आप दुखी हो। तो ये बहुत जरूरी है, वी नीड टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग द पीपल शुड लाइक मी। बहुत लोग होंगे जो हमें लाइक नहीं करते। आप कितने भी अच्छे आदमी हो या महिला हो, कितना भी अच्छा काम करते हो, आपको पसंद ना करने वाले लाखों में होंगे, पर यकीन मानिए आपको पसंद करने वाले भी करोड़ों में होंगे। काउंट दोज करोड्स, दोज हु लाइक यू, इग्नोर देम दोज हु डोंट लाइक यू। हम भी पब्लिक काम में रहते हैं, हजारों तरह के लोग होते हैं, कोई दो चार गालियां सुना के चला जाता है, बेकार था, दस लोगों को अच्छा लगता है। तो खुश रहने के लिए जो अच्छा लगा उसको एंजॉय करिए, बाकियों को इग्नोर करिए। देवी और सज्जनों, लाइफ में और एक बड़ा कॉज होता है, बड़ा कॉमन कॉज है सुखी ना होने का या दुखी होने का, वे कि अटैचमेंट। अटैचमेंट जब हम कहते हैं कि, या हमारे शास्त्र कहते हैं कि डिटैच्ड बनो, अटैचमेंट को छोड़ो, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी को प्यार करना छोड़ दो। बच्चों से डिटैच्ड हो जाओ, घर से डिटैच्ड हो जाओ, स्पाउस से डिटैच्ड हो जाओ, इसका अर्थ यह नहीं कि आप उन्हें प्यार मत करो। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, अटैचमेंट एंड लव। लव जहां जिनके लिए आप कंसर्न हो, आप उनकी खुशी में खुश होते हो, आप उनके दुखों में दुखी होते हो, आपको अच्छा लगता है कि वो बढ़ें, पले आगे बढ़ें। अटैचमेंट तब होता है कि जो आपको कुछ करना धरना नहीं है, आपके दुखी होने पर कुछ होने वाला नहीं है कि सुखी होने पर भी कुछ होने वाला नहीं है, तब भी आप अननेसेसरी दुखी रहते हो। बच्चों से प्यार करते हो, उनको प्यार दो, उनके केयर करो, जो भी आप कर सकते हो करो, पर बच्चा कहीं खराब हो गया, बीमार हो गया, या पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलत काम हो गया। मैं जो कह रहा हूं इसका अर्थ नहीं कि ये बड़ा आसान है कि आप सब नहीं करते हो, कर लेना चाहिए। मैं भी आप में से एक हूं, आप भी हमारे में से एक हैं, ये हम सबकी है। पर ये सब यूनिवर्सल रूल्स है, जो मुझे भी फॉलो करना है आपको भी फॉलो करना है। जो जितना ज्यादा फॉलो करेगा उतना ज्यादा खुश रहेगा, जितना कम करेगा उतना ज्यादा दुखी रहेगा। बच्चों को केयर करना, प्यार देना, वो एज ए पेरेंट्स इट्स आवर ड्यूटी। पर बच्चों के बीमार होने पर, खराब होने पर खुद दुखी होना, ये अटैचमेंट। लाइफ, ये मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दिया। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी को एंजॉय करो, आपको कोई गाड़ी पसंद है, गाड़ी खरीदा, चलाया, एंजॉय करो, गाड़ी चलाओ, घूमो फिरो। अटैचमेंट कहां आता है, जब गाड़ी को खरोंचाने पर आपकी नींद खराब हो जाती है, गाड़ी 10 साल पुरानी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नई नई गाड़ी में अटैचमेंट ज्यादा होता है ना। पर प्रॉब्लम और है इससे ज्यादा गहरा। कुछ लोग तो 40 साल की गाड़ी से भी इतना अटैच्ड है वो घर से गैराज से हटाना ही नहीं चाहते। क्यों भाई, चला तो नहीं रहे हो, यूज तो नहीं कर रहे हो, फायदा नहीं उठा रहे हो। ये स्टुपिडिटी है। आप इंसान हो, प्राणी हो, चीजों को यूज करना सीखो, चीजों से यूज्ड मत होना। गाड़ी को यूज करो अगर खुशी मिलती है तो, पर गाड़ी से अटैच्ड मत हो कि वो बेचारा निर्जीव गाड़ी से भी तुम यूज्ड हो जाते हो। खुशी ढूंढना हमारा काम है। गाड़ी से खुशी मिलती है, एंजॉय इट। गाड़ी से दुख मिले, छोड़ देना। छोड़ने की हिम्मत रखना डिटैचमेंट, फिजिकली नहीं मेंटली। जब आप मेंटली रेडी है टू गिव अप समथिंग, उसके बिना भी आप रह सकते हैं, ये कल्टीवेट करना, दैट इज डिटैचमेंट। और एक बहुत लोगों की प्रॉब्लम है दुखी होने का, खुश ना होने का, रेजिस्टेंस टू चेंज। दुनिया बदलती है जी, आप जिस एरिया में रहते हैं, आपके सामने 20-25 साल में कितने चेंजेस हो गए, आपके लाइफ में कितने लोग आए और गए, आपके शरीर में कितने चेंजेस हुए, आपकी थॉट प्रोसेस में कितने चेंजेस हुए होंगे। पर अगर आप उनके साथ ताल देकर नहीं चलते तो आप पीछे रह जाएंगे। दुनिया के साथ आप जिनको बदल सकते हैं जरूर बदलिए। जिस एनवायरमेंट को आप चेंज करना चाहते हो, कर सकते हैं तो डेफिनेटली डू इट। अगर नहीं कर सकते और छोड़ नहीं सकते, आपके पास तीन ऑप्शन है। आपको एनवायरमेंट चेंज करना है, करिए। नहीं कर सके, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते, वहीं रहना है, चेंज भी नहीं कर सकते तो खुद चेंज हो जाइए। देयर इज नो फोर्थ थिंग। चेंज नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते, मैं भी चेंज नहीं हूंगा तो दुखी रहिए। देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन। तो ये बहुत जरूरी है लाइफ में चेंजेस लाते रहना, सर्कमस्टांसेस के, एनवायरमेंट के हिसाब से। हम करते भी हैं अपने आप को और चेंजेस करते रहते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो 80 प्लस के हैं, 85 प्लस के होते हैं, 90 इयर्स होते हैं, उनको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम पता होता है। बहुत लोग यूज ही नहीं करते, फोन भी नहीं यूज करते, वो रखते हैं सीधा साधा फोन। ये माइंड का गेम है ना, इसमें फिजिकली आप कितने एजेड हैं वो मैटर नहीं करता। पर बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, 90 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, इवन अपने ग्रैंड बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से सीख जाते हैं, और उनके अभी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कांटेक्ट बनाए रखते हैं, बिल्कुल उन्हीं के लेवल के हो चुके हैं। उनके साथ मूवी की बात करते हैं, क्रिकेट की जो भी बात करते हैं, दे चेंज देमसेल्फ टू गेट द हैप्पीनेस, खुशी। अपने आप को आप चेंज नहीं करेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, आप रहिए पीछे। मुझे एक मित्र मिले दिल्ली में, बड़े अच्छे ज्ञानी, व्यापारी हैं वैसे, व्यापारी मतलब बिजनेसमैन, पर बड़े ज्ञानी आदमी हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। उनका हमेशा कंप्लेन रहता है कि मैं जहां भी जाता हूं, वर्कशॉप में, सेमिनार में, या लोगों से बात करता हूं, लोग कहते हैं कि आपकी भाषा समझ में नहीं आती, बहुत हैवी है। तो मेरे से भी बात करते हैं तब भी कभी कभी लगता है कि बड़ा हैवी शब्द है। तो मैंने कहा आप चेंज कर लीजिए, थोड़ा सरल बना लिए, लोगों को समझ में आए, मैं क्यों समझ चेंज करूं? जिनको मेरे से काम, जिनको मेरी बातें सुनना है, वो अपने आप को चेंज करें, वो अपना ज्ञान बढ़ाए, मैं क्यों नीचे जाऊं? अब ये खरा एटीट्यूड है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुए तो पब्लिक का क्या बिगड़ गया? आपको कोई सुन नहीं पाया, आपके पास बहुत ज्ञान था, आप चाहते तो हजारों लोग आपको सुनते, आपकी ज्ञान का यूज भी होता, लोग भी आपको पसंद करते, पर आप अकड़ में रहे कि मैं उनके लेवल नीचे क्यों आऊं, वो ऊपर उठे। यह है कि रेजिस्टेंस टू चेंज। लाइफ में जहां भी आपको हमें जरूरत पड़े चेंज करें अगर खुशी मिलती है। अब आते हैं थोड़े पॉजिटिव साइड, बहुत कुछ छोड़ेंगे तो लाइफ में बचेगा क्या? तो कुछ पकड़ के रखिए। अब वो देखते हैं कि क्या हम करें जो हमें खुशी देगी। सबसे पहली बात है ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल। किसके लिए? जो भी मेरे पास है, जो नहीं है वो इग्नोर करें। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति, खराब से खराब हालत में जीने वाला व्यक्ति, जो कह सके कि मेरे पास कुछ नहीं है ग्रेटफुल होने के लिए। टाइम कम है, आपको एक स्टोरी सुनाता। कुछ नहीं तो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, कान है, नाक है, शरीर है, सब कुछ, ब्रेन है, सब कुछ काम करता है। दैट्स एनफ टू बी ग्रेटफुल। लाइफ में जो भी है अगर हम उसके लिए ये आदत डाल दें टू बी ग्रेटफुल, सुबह से शाम तक मेरे साथ जो जो अच्छा हुआ अगर मैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करूं, मैं अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, पड़ोसी के लिए, बॉस के लिए, पैसे के लिए, स्टोर के लिए, किसान के लिए, जिन्होंने मेरे से मुस्कुराकर बात की, हंस के बात की, प्यार से बात की, गले मिला, कोई भी वो छोटी छोटी चीजें, इफ आई फील दैट ग्रैटिट्यूड इट विल गिव मी इमेंस प्लेजर। ग्रैटिट्यूड के बहुत फायदे हैं देवी और सज्जनों, खुद के लिए। जब हम दूसरों के प्रति थैंकफुल होते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता है। हो सकता है आपके थैंक्स बोलने से उनको अच्छा लगता हो, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, पर हमारे अंदर की खुशी को 100 गुना 1000 गुना बनाता है। तो इट इज ए नीड टू कल्टिवेट दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू बी हैप्पी। द सेकेंड थिंग थोड़ा मुश्किल होता है पर वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। लाइफ में बहुत कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। किसी ने हमारे साथ खराब व्यवहार किया, खराब बातें कही, खराब काम किया, नुकसान किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बुरा लगता है। एक दिन लगे, दो दिन लगे, जिसकी जितनी स्टैमिना है, पर मेंटली इफ आई एम रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इट मे टेक्स टाइम, तो इसका मतलब है कि मैं खुशी ढूंढ पाऊंगा। जितना जल्दी कर ले उतनी जल्दी खुश रहेंगे, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना स्ट्रेस में रहेंगे। पर आफ्टर ऑल आपको करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पुरानी चीजों को लेकर आगे की पूरी लाइफ आप को ग्रज रख करके बिताएंगे, तो दुखी रहेंगे। सामने वाला तो करके चला गया, दुखी मैं हूं, खुश मुझे होना है। इट्स माय ड्यूटी। देवियों सज्जनों, ये बहुत जरूरी है खुश रहने के लिए कि हम सिर्फ अपने लिए ना करें। हमें लगता है कि मैं अपने लिए जितना ज्यादा करूं उतना मैं खुश रहूंगा, बहुत पैसा बटोरूं, बहुत घर बनाऊं, बहुत हेल्थ इंश्योरेंस लूं, सब कुछ करूं, मेरे बच्चे अच्छे रहें। इतने में कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरा खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचर है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि आपके पास अगर सब कुछ है तो भी आप वैक्यूम फील करते हैं, आप कुछ ना कुछ आप एम्प्टी फील करते हैं अंदर। क्यों? आपकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो खुद को खुश रखने का एक और फैक्टर है, ईश्वर ने जो भी दिया है कुछ हिस्सा दूसरों के लिए जरूर हेल्प के लिए लगाएं, जैसा भी हेल्प कर सकते हैं, पैसे से, वाणी से, फिजिकली, किसी भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। जो करते हैं वो जानते हैं कि उसकी कितना कितना ज्यादा उसमें खुशी मिलती है। जो नहीं करते करके देखें, छोटी छोटी चीजें आपको फील होगा कि कितना, इवन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, दुख में हो, और किसी को आपने हेल्प कर दिया, उसी समय आपकी वो बड़े से बड़े दुख भी कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं दुख कम करने का एक बहुत बढ़िया, स्ट्रेस कम करने का एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, दूसरों को हेल्प करो जहां जैसा हम कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ईश्वर की भक्ति करना बहुत जरूरी है खुश रहने के लिए। एक सर्वे था, उसका रिपोर्ट था कि जो लोग थेइस्ट होते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो ज्यादा दिन जीते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है, लॉजिकल अर्थ है, कोई बाकी चीजें नहीं, कि जो ईश्वर को मानते हैं, जेन्युइनली मानते हैं, बिलीव करते हैं, जब बहुत ज्यादा दुख होता है लाइफ में, प्रॉब्लम्स आता है, उनके अंदर एक भरोसा है, ईश्वर है मेरे साथ, हेल्प करेगा। जो नहीं मानते हैं वो हेल्पलेस फील करते हैं, कोई है ही नहीं है, वो हेल्पलेसनेस दुख ज्यादा लाता है। इसलिए ईश्वर में भरोसा करिए, बट जो कंडीशन है अंडरलाइनिंग, जेन्युइनली भरोसा करिए, और उसके साथ उसको पाने के लिए जो कोशिश करें, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन करना। वैसे भी आप ईश्वर को मानते नहीं मानते, योग और मेडिटेशन से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है तो नेचुरली खुशी बढ़ती है। पर अगर आप ईश्वर में भक्ति रखते हैं और ईश्वर की हर वो काम को, जो भी आप पूजा, जप, तप, जो भी करते हैं, पूरे डूब के करते हैं, जैसे मेडिटेशन में आप अपने आप को खो देते हैं, अगर उस मेडिटेशन के साथ आपकी सारी एक्टिविटीज होती है, तो फिर तो कहने की क्या, आपके पुराने बीमारी समस्याएं भी सॉल्व हो जाती हैं। देवियों, सज्जनों, सार है कि खुशी हमारी हमारे हाथ में है। जितना हम अपने आप को नर्चर करेंगे, पॉलिश करेंगे, अपनी चीजों को, अपने अंदर की चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको ठीक करने की या बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना खुश रहेंगे। दूसरों पर डिपेंड करेंगे, लाइफ में खुशी कभी नहीं मिलेगी, और जितनी भी मिलेगी वो इतना कंडीशनल होगा, कभी भी कोई छीन के ले जाएगा, आप ताकते रह जाओगे। इसलिए खुद की खुशी की जिम्मेदारी खुद पर हम लें, और अगर कम खुश हैं, इन चीजों को करें, इनसे भी और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। खुश हैं तो बने रहिए खुश। ईश्वर से प्रार्थना है हम सब खुश रहें। ओम शांति शांति शांति।